आरव अगले दिन काफी एक्साइटेड होकर ऑफिस पहुंचा था। कल जो मीटिंग अधूरी रह गई थी वो आज पूरी होने वाली थी और ये भी निश्चित था कि आयु डिजायर्स आने वाली है। आरव को मीटिंग शुरू होने का इंतजार नहीं हो रहा था और वो जरूरी फाइल्स लेकर पहले ही मीटिंग रूम में जाने लगा, लेकिन तभी अंदर से आने वाली आवाज सुनकर उसके पैर वहीं पर रुक गए थे। मीटिंग रूम में अनुष्का और मंथन बात कर रहे थे, जहां अनुष्का के फोर्स करने पर मंथन ने कल शाम की बात के बारे में उसे बताया। मंथन के लिए ये बताना बहुत मुश्किल था कि कल कैसे उसने अपना आपा खो दिया था और इस चक्कर में उसने आयु को हर्ट किया था। सब कुछ बताते हुए मंथन की आंखों में आंसू आ गए थे। वैसे भी उसका बर्ताव भी ये जाहिर करने के लिए काफी था कि उसने जो किया उसके बाद वो कितनी गिल्ट में था। अनुष्का से भी उसे तसल्ली देने के लिए कुछ शब्द बोलते नहीं बन रहे थे, उल्टा उसे भी मंथन पर गुस्सा आ रहा था। जैसे ही बाहर खड़े आरव ने सारी बातें सुनी, गुस्से से उसकी मुठियाँ कस गई थीं। उसने एक झटके में मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर अनुष्का और मंथन दोनों ही ठिठक गए थे। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने आरव खड़ा हुआ था। आरव के चेहरे के भाव साफ जाहिर कर रहे थे कि उसने सब सुन लिया था। वो तेजी से मंथन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अनुष्का बीच में आ गई थी। उसने अपने दोनों हाथ हवा में करके आरव को समझाते हुए बोली, लिसन आरव, बैठकर बात करते हैं, तुम्हें बस मिसअंडरस्टैंडिंग। आरव ने अनुष्का की बात को अनसुना किया और उसे अपने हाथ से साइड कर दिया था। वो तुरंत मंथन की तरफ बढ़ा और उसके कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। मंथन ने ना तो पीछे हटने की कोशिश की और ना ही अपने बचाव में उसने कुछ कहा था। मंथन की नजरें झुकी हुई थीं। इससे पहले कि आरव उसे दोबारा मारता, अनुष्का ने पीछे से आरव के हाथ को पकड़ लिया था। उससे गलती हो गई थी और ये खुद उसे एक्सेप्ट कर रहा है। क्या तुम दो मिनट के लिए बैठकर बात नहीं कर सकते? अनुष्का गुस्से में चिल्लाई। आरव ने अनुष्का की तरफ देखा और कड़वाहट से हंसते हुए बोला, यू नो वॉट अनुष्का सिंह ओबरॉय, मैंने तुमसे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। मुझसे गलती हुई तो तुम लोग दिन रात मुझे टॉर्चर करते रहे, जबकि आज तक मैंने उसके साथ जबरदस्ती करना तो दूर की बात है, उसकी मर्जी के खिलाफ छुआ तक नहीं, और आज ये उसे फोर्स करके आया है, तब तुम्हें लग रहा है कि गलती हो गई है। वाओ, आरव अनुष्का के सामने ताली बजाने लगा। अनुष्का की नजरें नीचे हो गई थी। आरव ने मंथन की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोला, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ खड़े होकर सब कुछ बताने की हिम्मत रखते हो? तुम जानते हो मंथन, तुम धीरे धीरे उसकी और मेरी दोनों की नज़रों में गिर रहे हो। कहने को तुम पहले उसकी लाइफ में आए थे, लेकिन कभी तुमसे वो प्यार और सिक्योरिटी दे ही नहीं पाए। उसे सुनाना बंद करो आरव, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। मैंने सुना था कल तुम किस तरह उसे जबरदस्ती लिफ्ट में बात करने के लिए लेकर गए थे, अनुष्का ने बीच में कहा। बात करने के लिए लेकर गया था? रेप? आरव बोलते हुए रुक गया और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। ना तो उसके शब्दों पर उसका काबू था और ना ही उसके जज्बातों पर। आरव ने गहरी सांस ली और फिर आंख खोलकर जोर से चिल्लाकर कहा, अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से तुम दोनों दफा हो जाओ, और इससे ज्यादा घिन मुझे तुमसे आ रही है अनुष्का। तुम मुझसे नफरत करती हो, इस वजह से इसे सपोर्ट कर रही हो। मैं इसे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कोई तमाशा भी नहीं चाहती हूँ, अनुष्का ने सख्ती से जवाब दिया। जहाँ आरव और अनुष्का एक दूसरे से बहस कर रहे थे, वहीं मंथन तो कुछ बोलने तक के हालात में नहीं था। वो बस नजर झुकाकर अपनी मुठियां कसकर वहां पर खड़ा हुआ था। उन दोनों की बहस में मंथन ने धीमी और खोई हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है। आरव सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शायद तभी उसका सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं तो उसे सॉरी तक कहने के लायक नहीं रहा। मंथन ने इतना ही कहा और फिर जिस फाइल को लेने के लिए वो आया था उसे उठाकर वहां से जाने लगा। आरव ने आगे उसे कुछ नहीं कहा। उसने एक नज़र अनुष्का की तरफ घूर कर देखा और फिर वो भी केबिन से बाहर निकल गया था। उन दोनों के जाने के बाद अनुष्का ने गहरी सांस ली और वहां रखी एक कुर्सी पर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभरे हुए थे। ये क्या कर दिया तुमने मंथन? तुम्हारे इरादे भले ही बुरे ना रहे हों, लेकिन तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हारा फेवर तक करने की हालत में नहीं रही। आई होप कि आयु खुद को संभाल ले और आरव कोई बड़ा तमाशा न करे, अनुष्का ने परेशान स्वर में बड़बड़ा कर कहा। वहीं मीटिंग रूम से बाहर निकलकर आरव सीधा अपने केबिन में आया था। उसने तुरंत अयान को कॉल किया। अयान पूरी रात आयु के साथ था, दवाइयों की वजह से वो देर तक सो रही थी। आरव का कॉल आने पर अयान तुरंत एक बार के लिए कमरे से बाहर आ गया था। मैं आपको कॉल करने ही वाला था, अयान ने कॉल रिसीव करते ही कहा। क्या आप आज की मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते? ये थोड़ा अनप्रोफेशनल होगा, पर आरव को डायरेक्ट कुछ बताने के बजाय अयान उसे बस मीटिंग पोस्टपोन करने की कह रहा था और उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या बहाना दे। अयान एक पल के लिए चुप हो गया। वो आगे बोलता उससे पहले आरव ने धीमी बुझी हुई आवाज में कहा, कैसी है वो? अयान को उसका सवाल सुनकर झटका सा लगा। उसने हैरत भरे लहजे में पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? आयु की, आरव ने जवाब दिया। वो खुद बात करने के लिए सही शब्द ढूंढ रहा था। उन दोनों के बीच कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर आरव आगे बोला, उसे हर्ट हुआ होगा। सच कहूं तो इस तरह की हरकत अगर मैं करता तो शायद उसे ये मुझसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन मंथन से नहीं। वो उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी और मैं भी। कमॉन भाई, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ और जिस तरह मंथन ने किया वैसा आप कभी नहीं करने वाले हो, अयान ने तुरंत आरव का पक्ष लेते हुए कहा। लेकिन मेरी हरकतें भी तो उसे हर्ट कर जाती हैं, जाने अनजाने में मैं भी उसे तकलीफ पहुंचा ही देता हूँ, और कल भी मैंने उसे बात करने के लिए उसे जबरदस्ती लिफ्ट में खींच लिया था, आरव ने अफसोस भरे लहजे में कहा। न जाने क्यों वो खुद के बर्ताव को मंथन से कंपेयर कर रहा था। आप उसे बात करने के लिए खींचकर लेकर गए थे, आप भी गलत हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि लिफ्ट में जाने के बाद आप कभी उसकी मर्जी के खिलाफ उसके करीब नहीं आए होंगे, अयान ने उसे समझाया। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसे कल लिफ्ट में जो भी हुआ वो सब याद आने लगा। लिफ्ट में जाते ही उसने सच में आयु के हाथ को छोड़ दिया था और एक बंद छोटे से कमरे में भी आयु को उसे एक बार भी डर नहीं लगा। यहाँ तक कि जब आरव को सांस नहीं आ रहा था और आयु उसके पास आ रही थी तब भी आरव उसे इशारे में मना कर रहा था। क्या मैं उससे मिलने आ सकता हूँ, अचानक आरव ने पूछा। मुझे नहीं लगता ये सही टाइम होगा, वो लंबे टाइम से सो रही है और कभी भी जाग सकती है, मुझे नहीं लगता कि वो इस बारे में किसी से बात करना चाहेगी, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। अयान ने आरव को तुरंत वहां आने से मना कर दिया था। आई प्रॉमिस, मैं दूर से देखूंगा और उसके पास नहीं आऊंगा, कोई जिद नहीं करूंगा, प्लीज आने दो, आरव ने लगभग गिड़गिड़ाती आवाज में कहा। अयान ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो आयु गहरी नींद में सोई हुई थी। वैसे भी डिजायर्स और होटल में ज्यादा दूरी नहीं थी, ठीक है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए 5 मिनट मिलेंगे। डिजायर्स के आसपास के ही एरिया में कोई होटल ब्लू मून है, हम यहाँ सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 20 में है, अयान ने आरव को एड्रेस बता दिया था।
आरव ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत आयु से मिलने के लिए जाने लगा। अगले 7 मिनट में वो आयु के कमरे के सामने था। अयान ने देखा आरव हांफ रहा था, वो दौड़कर वहां पर आया था। आरव ने सीधे यही पूछा, क्या वो उठ गई है? अभी तो नहीं, अयान ने जवाब दिया। आरव तुरंत अंदर जाने लगा लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए थे। उसने अयान की तरफ देखा और उसके गले लग गया था। थैंक यू सो मच उसे हमेशा संभालने के लिए, आरव ने धीमी आवाज में कहा। अयान ने धीरे से उसकी पीठ को सहला दिया था। आरव तुरंत उससे अलग हुआ और कमरे के अंदर चला गया था। आरव अंदर गया तो उसने देखा आयु ब्लैंकेट में सिमटकर सोई हुई थी। आरव ने तुरंत रूम का टेम्परेचर बढ़ाया ताकि उसे ठंड न लगे। वो उसके पास गया और जैसे ही आरव ने आयु के चेहरे को देखा उसकी नज़र सीधे आयु के माथे पर लगी बैंडेज पर गई। अयान सच कहता है, हम दोनों ही तुम्हें डिजर्व नहीं करते हैं, आरव ने भारी आवाज में कहा। गलती मंथन से हुई थी लेकिन फिर भी आरव के मन में ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसे वो हर एक लम्हा याद आने लगा जब उसने आयु को बार बार तकलीफ पहुंचाई थी, कभी अपनी हरकतों से तो कभी अपनी जिद में आकर। बहुत बुरा होना मैं तुमसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि मेरा काम निकल सके, और जब शादी हुई तो उसमें भी तुम्हारी गलती निकाली, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और जब तुमसे प्यार हुआ तो अकेले ही तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया, कभी तुम्हारे डिसीजन को जानने या समझने की कोशिश भी नहीं की। मैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ जो तुम्हें अपना बनाने के बाद भी तुम पर शक करने लगा, लेकिन अब और नहीं, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, आई प्रॉमिस वही होगा जो तुम चाहोगी, आरव ने आयु की तरफ देखकर कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव अब तक किसी जिद में अड़ा हुआ था कि वो कैसे भी करके आयु को अपने पास रखेगा, लेकिन मंथन ने आयु के साथ जो भी किया था उसके बाद उसे समझ आ गया था कि वो आयु के साथ जबरदस्ती करके उसे हर्ट कर रहा है। आरव ने अपनी तरफ से फैसला ले लिया था, वो प्यार से आयु की तरफ देख रहा था, लेकिन तभी आयु ने करवट बदली और आरव जल्दी से कमरे से बाहर चला गया, हालांकि उसने नींद में ऐसा किया था। बाहर आते ही आरव ने अयान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उसका पूरा ख्याल रखना और जो कुछ चाहती है वही करना, जब उसे ठीक लगे तब हम मीटिंग को आगे बढ़ा लेंगे, और दूसरी बात, वो इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहती है तो उसे वापस गोवा लेकर चले जाना। अयान आंखें बड़ी करके आरव की बातें सुन रहा था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। अयान कुछ पूछ पाता उससे पहले आरव वहां से चला गया था, तो वहीं अंदर आयु भी जाग चुकी थी। उसने अयान को आवाज दी तो अयान जल्दी से दौड़कर अंदर चला गया था। तुम ठीक हो? अंदर आते ही अयान ने सीधा यही पूछा। हाँ, आयु ने जवाब दिया और फिर इधर उधर देखने लगी। वो उलझन भरे स्वर में बोली, मुझे अभी महसूस हुआ कि तुम यहीं पर खड़े हुए हो, तुम बाहर थे क्या? नहीं, मैं पूरे टाइम तुम्हारे साथ था और तुम्हें बिल्कुल सही लगा था कि मैं ही यहाँ पर खड़ा था, बीच में कॉल आ गया तो बाहर चला गया, अयान ने हड़बड़ाकर कहा। ठीक है, टाइम क्या हुआ है? हमें मीटिंग के लिए जाना है, आयु बोली। सोने के बाद उसे बेहतर लग रहा था और वो उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। आयु उठने को हुई तभी अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो बोला, तुम चाहो तो रेस्ट कर सकती हो, एक्चुअली मिस्टर खुराना हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं और उन्होंने 2-3 दिन के लिए मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। सच में अजीब है ना, कल वो मुझसे बात करने के लिए डेस्परेट हो रहा था और मुझे यही लगा कि मीटिंग पोस्टपोन करना तो दूर की बात है, उसका बस चले तो वो रोजाना मीटिंग रखे और जबरदस्ती मुझे अपने पास आने पर मजबूर करे, आयु ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वो अयान से छुपा हुआ नहीं था। पहले उसे आरव के फैसले पर हैरानी जरूर हुई थी लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि आरव ने इस मीटिंग और आयु को समय क्यों दिया था। अयान भी फिलहाल इस बारे में बात करके आयु को फिर से वो सब याद नहीं दिलाना चाहता था। हालांकि वो जानता था कि आयु कुछ भी भूली नहीं है, पर साथ ही अपने स्वभाव के अनुसार आयु फिलहाल उस पर बात नहीं करना चाहती थी, तो अयान ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ जहां पहले आरव आयु को रोकने के लिए उसे ड्राफ्ट में अलग अलग कमियां और चेंजेस करवा रहा था, तो वहीं आरव अब खुद अपने केबिन में बैठकर आयु की कमियां और अपनी प्रेफरेंस को सही से लिख रहा था ताकि अगली ही मीटिंग में सब कुछ फाइनल हो जाए और आयु को यहां रुकना ना पड़े। मिस्टर खुराना तो सच में बदल गए, लेकिन कब तक? आखिर कब तक वो खुद को कंट्रोल कर पाता है आयु से खुद को दूर करने में? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।